ये आकाशवाणी दिल्ली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राजधानी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक कथित भ्रष्टाचार मामले में समन जारी किया। दिल्ली पुलिस ने शहर के उत्तर पश्चिम जिले से 18 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। एम्स दिल्ली और IIT दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राजधानी में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में प्रमुख अवसंरचना पहलुओं को समय पर पूरा करने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। श्री गडकरी ने परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी योजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हों। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से शहर में लोगों को जाम से राहत मिलेगी और ये वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो दिल्ली में वर्तमान में बन रहे हैं, मैं अपनी केंद्र सरकार को जो कंप्लीट हुए प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए 64,000 करोड़ की लागत से जो पिछले प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए उनका भी धन्यवाद देती हूं, जिनका DPR तैयार होकर के पूरी की पूरी योजना बन चुकी है। 24,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे हैं सभी प्रोजेक्ट के लिए बहुत धन्यवाद देती हूं। पॉल्यूशन फ्री सिटी बने, दिल्ली का ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मौजूदा योजनाओं की समीक्षा, उभरती जरूरतों पर चर्चा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप दूरदर्शी एजेंडा निर्धारित करने पर जोर दिया गया। परिषद ने देश में राष्ट्रीय वयोश्री योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में भारत की आबादी में 2047 तक बुजुर्गों की संख्या 20% होने का अनुमान व्यक्त करते हुए परिषद ने देशभर में वृद्धाश्रमों के लिए न्यूनतम मानकों को लागू करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय महत्व की लिविंग हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय से सहयोग मांगा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय के अनुसार श्री शेखावत ने उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वो जल्द ही अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विधानसभा का दौरा करेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने वॉक इन पब्लिक हियरिंग की सुविधा फिर से शुरू कर दी है, जिससे लोग बिना किसी पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकेंगे। DDA ने बताया है कि इसका उद्देश्य अधिक सुलभ और सुविधाजनक तरीके से जन शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना है। DDA के अनुसार लोग अब बिना किसी पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के सोमवार और गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। कार्यालय परिसर में निर्बाध प्रवेश और निकास के लिए लोगों को अपना आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी एक पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार शहर के गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर मीडिया से बातचीत में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने पिछले 100 दिनों में गरीबों के उत्थान के लिए कई काम किए हैं।
गरीबों के उत्थान के लिए बहुत बड़े बड़े काम सरकार ने किए हैं। गरीब के बच्चे को CM श्री स्कूल देना, गरीब की झुग्गी में टॉयलेट देना, स्नान गृह देना, EWS के बच्चों को उनके हिस्से की वजीफा 19 करोड़ रुपए देना, गरीब के बच्चे को विदेशी भाषा सीखने के लिए लैंग्वेज लैब बनाकर देना, साधारण परिवारों को फीस के माफिया से मुक्ति दिलाने का कानून, ये सब विषय हमारी सरकार ने 100 दिन में किए।
बिजली कटौती पर एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में इस वर्ष बिजली कटौती सबसे कम रही।
आंकड़ों के आधार पर मैंने बताया, पिछले 5 साल में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 4 महीनों में सबसे कम बिजली हमारे दौर में कटी है। 2020 के इसी कालखंड में 2700 बार बिजली कटी थी, ये आंकड़ों के साथ साबित किया है मैंने।
भारतीय जनता पार्टी ने आज ऑपरेशन सिंदूर की कथित आलोचना को लेकर कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सेना की सफलता को सरेंडर के समान बताया, वो उनकी बहादुरी और बलिदान का स्पष्ट अपमान है।
राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशन, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना ये दर्शाता है कि ये मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में कक्षा निर्माण से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में तलब किया है। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए दावा किया कि पिछली आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार ने कक्षा निर्माण में घोटाला किया है।
इतना बड़ा घोटाला, क्लासरूम स्कूल का करोड़ों रुपया उसमें लूटने का काम किया, अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। हमें तसल्ली है अब एसीबी इसके अंदर जांच पूरी करेगी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी ने जो इस दिल्ली को लूटा है स्कूलों के नाम के ऊपर, वो अब आपके सामने आने वाला है।
दिल्ली पुलिस ने शहर के उत्तर पश्चिम जिले से 18 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 वयस्क और 12 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के वजीरपुर जेजे कॉलोनी क्षेत्र में कुछ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने गहन अभियान चलाकर सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि ये लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे। इनके पास से 4 बांग्लादेशी पहचान पत्र और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के लिए जासूसी के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। जसबीर सिंह उर्फ जान महल ने कथित रूप से यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ भारतीय सेना की गतिविधियों की संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए किया था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी जसबीर हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के निकट संपर्क में था। ज्योति को हाल ही में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जसबीर भारत से निष्कासित पाकिस्तान उच्चायोग के एक पूर्व अधिकारी दानिश उर्फ एहसानुर रहीम के साथ भी संपर्क में था। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि जसबीर ने दानिश के निमंत्रण पर दिल्ली में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और बिलागर से बातचीत की थी। वो वर्ष 2020, 2021 और 2024 में 3 बार पाकिस्तान भी गया था। जसबीर पाकिस्तान में कथित रूप से ISI अधिकारियों के सीधे संपर्क में आकर जासूसी के लिए भर्ती हुआ था। उसके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तान से जुड़े 150 संपर्कों का पता चला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा सके। ये नया केंद्र अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेरित समाधानों के विकास पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत बनाना है। दिल्ली नगर निगम ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ आज IIT दिल्ली के परिसर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न संगठनों के जाने माने विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला का विषय था दिल्ली को हरित भविष्य के लिए सशक्त बनाना। इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि निगम राजधानी को स्वच्छ, हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD शुक्रवार से 13 जुलाई तक नई दिल्ली में ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह का आयोजन करेगा। 1 महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस समारोह में 45 से अधिक नाटक दिखाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
इस बार समारोह में अजय शुक्ला कृत ताजमहल का टेंडर, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे, धर्मवीर भारती की अंधा युग, अभिज्ञान शाकुंतलम, लैला मजनू, बाबूजी और समुद्र मंथन जैसे नाटक शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए एनएसडी के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने कहा कि एनएसडी 15-16 साल की अवधि के बाद इस ग्रीष्मकालीन समारोह का आयोजन कर रहा है और यह दर्शकों विशेषकर नई पीढ़ी को काफी आकर्षित करने वाला है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल एक 30 से 40 दिन का ग्रीष्मकालीन समारोह लोगों के सामने लेके आ रहा है जो 12-15 साल से सिकुड़ गया था। पहले ये ऐसे ही होता था, अभी सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के प्रयास सबकी जारी है और रंग प्रेमियों के सामने लेके आ रहे हैं। इसमें हर जॉनर का प्ले आपको देखने को मिलेगा।
38 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में प्रतिदिन 2 बार मंचन होगा, जिसमें पहला मंचन दोपहर 3:30 बजे और दूसरा शाम 7:30 बजे और दूसरा शाम 7 बजे होगा। रंगमंच के शौकीन लोग नाटक और कला के इस उत्सव का आनंद ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। एक रिपोर्ट।
जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। इन संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने की अधिसूचना 16 जून को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में 2 चरणों में की गई थी। पहले चरण में घरों की सूची बनाना और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना थी। वर्ष 2021 की जनगणना भी इसी तरह 2 चरणों में कराने का प्रस्ताव था। इसकी सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गई थी। हालांकि देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाएंगे। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का एक हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर की अरावली श्रृंखला का फिर से नवीकरण है। परियोजना का उद्देश्य 4 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना है और अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इस परियोजना से क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु लचीलापन भी सुधरेगा। साथ ही स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी झंडी दिखाएंगे। इस पहल से स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा और ये पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक होगा। भारत सहित दुनिया भर से लगभग 18 लाख हज यात्री आज से शुरू हुई 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के मीना में एकत्रित हो रहे हैं। इन लोगों ने पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू की। हज यात्री आज रात मीना में बिताएंगे और कल सुबह हज की मुख्य रस्म अदा करने के लिए अराफात के मैदान जाएंगे। इससे पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रत्येक भारतीय हज यात्री के लिए एक आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के सभी प्रबंध किए गए हैं। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज पूरे दिन तेज धूप रही, हालांकि शाम से तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ राजधानी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक कथित भ्रष्टाचार मामले में समन जारी किया। दिल्ली पुलिस ने शहर के उत्तर पश्चिम जिले से 18 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। एम्स दिल्ली और IIT दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।